फिर से पूछ।
साथियों नमस्कार, आप सुन रहे हैं मोबाइल वाणी। मोबाइल वाणी के लिए मैं दिनकर पातुकर। आज मोबाइल वाणी के मंच पर एक ऐसी शख्सियत रूबरू होने जा रही है जो छिंदवाड़ा जिले की पहली महिला अधिवक्ता होने के साथ साथ गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए निरंतर संपूर्ण देश भर में लड़ती है और यहाँ तक कि उनके लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक इनके पक्ष में न्याय दिलाने के लिए कोर्ट तक पहुंचती है। ऐसी पहली अधिवक्ता सुश्री आराधना भार्गव जी हमारे साथ रूबरू होने जा रही है। नमस्कार दीदी।
नमस्कार
दीदी, हम आपसे जानना चाह रहे कि अभी हाल ही में संसद में कुछ कानूनों पर पूरी तरह बदलने या समाप्त करने पर चर्चा हुई, तो हम आपसे जानना चाहते क्या कानून बदलने से न्याय मिल पाएगा?
कानून बदलने से न्याय तो नहीं मिल पाएगा, इन्होंने तो संहिता का नाम बदल दिया, दंड प्रक्रिया संहिता। यानी किसी अपराध के लिए दंड देने की क्या प्रक्रिया होगी, स्पष्ट तौर पर उसमें लिखा हुआ है। इन्होंने उसका नाम रख दिया न्याय संहिता। तो ये इस तरीके की बातें इन्होंने की हैं, जिसका कोई सिर है ना, जिसका कोई पैर है। अब जैसे इन्होंने राष्ट्रद्रोह के मामले को खत्म करने की बात कर दी, परंतु वही दूसरी तरफ इन्होंने कहा अगर जो व्यक्ति सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, जो सरकार के खिलाफ बोलेगा, उस व्यक्ति के ऊपर ये मुकदमा रजिस्टर कर देंगे और बिना सुनवाई के उसको 90 दिन तक के जेल के अंदर रखने का काम करेंगे। उसी तरह इन्होंने कहा कि जो जज सरकार के खिलाफ फैसला देगा तो उसके खिलाफ 7 साल तक की सजा का प्रावधान। यानी ये जजों को भी धमकी दे रहे कि हमारे खिलाफ अगर तुमने कोई फैसला कर दिया तो 7 साल की सजा का प्रावधान होगा। बात यहीं आकर खत्म नहीं होती, फैसला सही है या गलत है ये भी तय सरकार करेगी कि ये फैसला गलत है। तो इस तरीके का काम तो न्यायाधीश भी यही बन जाएंगे और कंप्लेनेंट भी यह बन जाएंगे, तो ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ की पूरी कार्यवाही करने का काम कर रहे हैं। लोगों को न्याय मिले ऐसे कोई प्रावधान नहीं किया, और सबसे ज्यादा मुकदमेबाज तो सरकार है। कोई भी जाकर अदालतों में देख लीजिए, 80% मामले अगर पेंडिंग पड़े हुए हैं तो वो सरकार के खिलाफ है। सरकार को कोई किसी व्यक्ति को कोई राहत देनी नहीं है तो सरकार खुद न्यायालय में जाकर खड़ी हो जाएगी। वो जब सरकार न्यायालय में जाकर खड़ी हो जाएगी तो बोलेंगे भैया उसमें तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अभी मामला न्यायालय में पेंडिंग है, और ये पेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी तो न्याय मिलने की तो कहीं कोई संभावना दिखाई नहीं देती। इस पूरे बदलाव में कहीं पर सरकार ने पुलिस पर शिकंजा कसने का काम नहीं किया कि अगर इस तरीके की कोई कार्यवाही करेगा या गलत एनकाउंटर में किसी को मार दिया जाएगा तो उस पर ये कोई कार्यवाही करेंगे, इस तरीके का कोई संशोधन नहीं किया। जरूरत थी जब हम कोई आवाज उठाते हैं, चाहे वे मुल्ताई के किसान आंदोलन की बात कर लूं, चाहे मैं मंदसौर के किसान आंदोलन की बात कर लूं, चाहे हम बरेली के किसान के आंदोलन की बात कर लें, जब जब किसानों ने अपनी आवाज बुलंद की है इस सरकार ने उस पर गोली चालन करवाया है जिसमें हमारे किसान साथी शहीद हुए हैं, तो गोली चालन पर प्रतिबंध लगाने का काम करते, गोली चालन पर रोक लगाने का काम करते ताकि लोग आवाज उठा सकते। अब तो बिल्कुल इसका उल्टा है, अगर आंदोलन करोगे तो तुमको 7 साल के लिए जेल के अंदर डाल दिया जाएगा और तुमको कोई सुनवाई करने का अवसर नहीं मिलेगा। तो ऐसे कानून तो अंग्रेजों ने भी नहीं बनाए थे जैसे कानून हमारी सरकार बना रही है, जैसे संशोधन कर रही है। इसका मतलब है कि ये सरकार बहुत डरी हुई है या सरकार आंदोलनकारियों से डरती है इसलिए आंदोलनकारियों के खिलाफ ऐसे कानून बनाने का काम कर रही है ताकि सरकार के खिलाफ आवाज कोई व्यक्ति ना उठा पाए, और इसके लिए उसने पुलिस को बड़ा मजबूत कर दिया। आज छतरपुर का किस्सा है कि एक साधना न्यूज के जो ऑडिटर हैं, उसके ऊपर टीआई ने पेशाब कर दी और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। तो सरकार किसको हम लोग कहते हैं? सरकार हमसे डरती है और पुलिस को आगे करती है। तो सरकार ने पुलिस को आगे कर दिया कि भैया अगर तुम कोई आवाज आवाज उठाने का काम करोगे तो तुम्हारे खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई होगी। एनकाउंटर में लोग मारे जा रहे हैं, एनकाउंटर में गलत तरीके से मारने वाले पुलिस वाले के खिलाफ कोई सरकार इंक्वायरी करेगी, ऐसे कोई कार्रवाई, ऐसा कोई संशोधन करने का काम सरकार द्वारा नहीं किया गया। एफआईआर दर्ज करने के लिए कोई बाध्यता के काम नहीं है। अभी तो देखिए एफआईआर कोई व्यक्ति दर्ज करता है, पुलिस वाले लाकर जबरदस्ती दबाव बना रहे कि भैया वो कंप्लेंट वापस लेने का काम करो। तो पूरा पुलिस को सशक्त करने का काम इस कानून में संशोधन के माध्यम से जो किया गया है, जो जनहित में नहीं है, देश हित में नहीं है, जनता की मंशा जो थी, मतलब करोड़ों कुर्बानियां देने के बाद ये देश हमारा स्वतंत्र हुआ। वो जब स्वतंत्र हुआ तो जिन मुद्दों को लेकर हम संघर्ष कर रहे थे, जैसे नमक का सत्याग्रह था, ये दांडी मार्च था गांधी जी का कि भाई नमक पर टैक्स मत लगाओ। अब ये सर हम लोगों ने आंदोलन किया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे कई शहीद हुए, तब हमने इस कानून को पाया, पर हमारी सरकार तो नमक पर भी टैक्स लगाने का काम कर रही। तो ये तो अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों ने भी जैसे कानून नहीं बनाए ऐसे कानून बनाने का काम हमारी सरकारों द्वारा बहुत तेज गति से करने का काम किया जा रहा है। जैसे रेल की सुविधाओं का विस्तार ना करके सिर्फ रेलवे स्टेशन का नाम अगर बदल दोगे तो फिर लोगों को रेल की सुविधाओं का लाभ कहाँ से मिलेगा? भारत की आम नागरिक, भारत की आम जनता पैसेंजर से सफर करती है, तो पैसेंजर ट्रेनें या तो बंद कर दी गई है, या तेजस जैसी ट्रेन चलाने के लिए या वंदे भारत जैसी ट्रेन चलाने के लिए ट्रेनों को घंटों घंटों खड़े रखा जाता है और वो ट्रेनें निकलेंगी जिसमें रईस निकल रहे हैं। तो इस तरीके का काम तो इन सरकारों द्वारा किया जा रहा है। तो ये कानून अगर हमने बोल दिया भाई कि तुम ये काम कर रहे हो कि पैसेंजर को खड़े रख रहे हो या पैसेंजर को बंद कर रहे हो और ये वंदे मातरम ट्रेन जो तुम चला रहे हो, तो बस आराधना बारगो के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज कर देना और फिर उसको जेल के सीखों के अंदर डाल देना, उसकी सुनवाई कुछ नहीं करना। इस तरीके का कानून बना रहे हैं, उसमें न्याय की तो दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं दिखती। ये काम बहुत तेजी के साथ सरकार द्वारा किया जा रहा है। ये कह रहे नागरिक अधिकार अधिनियम, तो भारतीय दंड संहिता जिन अपराधों को कौन सा अपराध करने पर कौन सी धारा लगेगी वो भारतीय दंड संहिता बढ़िया दिल और दिमाग में स्पष्ट था, और कंफ्यूजन पैदा कर देना, जनता के बीच में कंफ्यूजन पैदा कर देना, पुलिस के बीच में कंफ्यूजन पैदा कर देना ताकि पुलिस वाले एफआईआर दर्ज ही ना करें। एक ये बहुत बड़ा नाटक है, जब एफआईआर दर्ज होगी तब तक किसी धारा को लगाने की बात होगी, तब तो दंड देने की बात होगी। या तो एफआईआर ही दर्ज नहीं कर रही है पुलिस, तो फिर न्याय मिलने का तो सवाल ही नहीं है। न्याय की पहली सीढ़ी है कि जो व्यक्ति पीड़ित है उसकी एफआईआर तो दर्ज करो, तो उनकी एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। एक बड़ा आंकड़ा देखिए कि भारत में गरीबों की संख्या घट गई, मतलब अब लोग अमीर हो गए, यह बताने का काम, संदेश देने का काम इन सरकारों द्वारा किया जा रहा, जबकि वास्तविक स्थिति यह है जो गरीब है उसका नाम गरीबी रेखा की सूची से गायब कर दिया। अब जब गरीबी रेखा की सूची से नाम गायब कर दिया तो फिर तो वो तो गरीब बेचारा कोई ना तो योजनाओं का लाभ लेगा। वो ये बता रहे हैं कि नहीं, वो तो अब तो भारत में आर्थिक व्यवस्था बहुत बढ़िया हो गई, अब तो कोई गरीब बचा नहीं। और अगर तुमने बोला ये बात तो भैया तुम्हारे को हम जेल पहुंचाने का काम करेंगे। तो इस तरीके का काम इन सरकारों द्वारा किया जा रहा है, जो भारत के संविधान के अंतर्गत जो हमारे मौलिक अधिकार है वो मौलिक अधिकार खत्म करने का काम इन सरकारों द्वारा किया जा रहा है। दूसरी बात, इस भारत के संविधान को खत्म करने का काम की तैयारी में यह सरकार है। ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उसका अपना संविधान ये बना चुके हैं और उसकी घोषणा इन्होंने वाराणसी में सम्मेलन लेकर कर दी है कि हिंदू राष्ट्र का ऐसा संविधान होगा। तो हमारे लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है कि जो भी देश में कानून बनेंगे वो नीति निर्देशक तत्वों को सामने रखकर बनेंगे, पर नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारत के संविधान में, ये भारत के संविधान को ही खत्म कर देंगे। तो इसी तरह के संशोधन करके ये चाहेंगे कि देश की जनता को न्याय मिलेगा, ये मंशा इनकी है। तो ये मनु के हिसाब से इस देश को चलाना चाहते हैं, जिसमें दलित आदिवासी हरिजन महिलाओं की इनके पास कोई इज्जत नहीं होगी। जैसा मनु के समय पे होता था कि दलित अगर सड़क से चलेगा तो जूते उसे सिर के ऊपर रखने पड़ेंगे और सामने एक मटका होगा, पीछे एक झाड़ू होगी ताकि उसके पद चिन्ह भी सड़क पर ना बचे। तो इस तरीके की मंशा वाले कानून बनाने का काम इस सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसका पुरजोर हम करते हैं और मोबाइल वाणी के माध्यम से सरकार को ये कहना चाहते हैं कि भारत के संविधान के प्रतिकूल अगर कोई कानून बनेगा तो भारत के संविधान के आर्टिकल 13 में उल्लेख किया गया है कि न्यायालय ऐसे कानून को रद्द करने का काम करेगी। और निश्चित तौर पर ऐसे कानून जो भारत के संविधान के खिलाफ बनाए हैं वो DY चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता में, हम आशा करते हैं कि ऐसे कानूनों को रद्द किया जाएगा।
दीदी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने अभी अपने जवाब के अंतर्गत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा नमक कानून आंदोलन की बात की, जो पूरी तरह असहयोग आंदोलन के नाम से संपूर्ण देश में संचालित हुआ था और उसी के तहत छिंदवाड़ा जिले में एकमात्र ऐतिहासिक जंगल सत्याग्रह स्थल लाखनवाड़ी, जहां आज ही के दिन 21 अगस्त 1930 को जंगल सत्याग्रह हुआ था, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगी?
जंगल सत्याग्रह जो हुआ वो जल जंगल जमीन को बचाने के लिए था, और जो बादल भाई थे उन्होंने जो 75 साल की उम्र में जंगल सत्याग्रह करने का काम किया, जिसमें हमारे पातुलकर परिवार के साथी भी रहे, और वो जंगल को बचाने के लिए जो सत्याग्रह था वो बहुत जरूरी था। और आज हमें फिर बादल भोई जैसे, आज हमें फिर पातुलकर परिवार जैसे साथियों की आवश्यकता है ताकि हमारे जंगल बच सके। आज बाहर तो हमें जंगल दिखाई देता है पर वह जंगल अंदर से पूरा कट चुका है। आपको और मोबाइल वाणी के दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगी कि सरकार ने फॉरेस्ट अधिनियम में जो संशोधन किया वो पहले ये था कि कोई जंगल काटेगा तो उसे सजा का प्रावधान था। सरकार ने कहा कि अब कोई पेड़ काटेगा तो उसे सजा नहीं होगी, सिर्फ जुर्माना भरना पड़ेगा। तो मतलब जंगल काटने वालों को प्रोत्साहित करने का काम इस सरकार द्वारा किया जा रहा है और ऐसे कानून बन रहे हैं। पहले जंगल में प्रवेश हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता था, अब जो इन्होंने फॉरेस्ट एक्ट में संशोधन कर दिया, अब पूरा जो लकड़ी माफिया है, जंगल माफिया है, वो पशुओं को भी नष्ट करने का काम कर रहे हैं। हमारे दिन देखते हैं कि शेर मारा गया, तो इस तरीके का ना जंगल बच रहे हैं ना वन्य प्राणी बच रहे हैं, और सरकार जो माफिया है उसको बचाने का काम कर रही है। और एक बहुत बढ़िया फिल्म बनी शेरनी, जिसमें विद्या बालन जी थी, उन्होंने फॉरेस्ट की इस तकलीफ को बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त किया था। तो मैं लोगों से ये भी कहूंगी कि मध्य प्रदेश में फिल्माई गई शेरनी फिल्म जरूर देखें, ताकि जंगल को बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, और हमारा प्रयास होना चाहिए। हर व्यक्ति को बादल भोई बनना पड़ेगा, हर व्यक्ति को जंगल सत्याग्रह के लिए सामने आना होगा, तभी हमारे जंगल बच पाएंगे। वरना सरकार ने तो जंगल को माफिया के हवाले करने का काम किया है, वो भी कानून बनाकर।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका कि आपने मोबाइल वाणी के मंच से क्या कानून बदलने से लोगों को न्याय मिल पाएगा इस विषय पर अपनी बात साझा की। इसके लिए पुनः आपका एक बार धन्यवाद।